الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي او كما قال عليه الصلاة والسلام یہ ایک حدیث ہے، اس میں حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے اچھا اور بھلا وہ آدمی ہے جو اپنی اہل کے ساتھ سب سے اچھا ہے، بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اسپیسیفکلی اہل کہا جاتا ہے بیوی کو، تو بیویوں کے ساتھ جو سب سے اچھا ہے وہ تم میں سے سب سے اچھا آدمی ہے، اور خیر وانا خیرکم لاہلی، اور تم سب میں میں اپنی اپنے اہل میں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو انسان کے اپنے اخلاق کے بارے میں بتایا کہ تم میں سے سب سے بہتر جو کریکٹرسٹکس ہوں گی، جو اخلاق ہوں گے، جو نیچر ہوگی آدمی کی، وہ اس کو ججمنٹ کا، اس کے معیار کا جو طریقہ ہوگا وہ کیا ہوگا، کہ سب سے بہترین اخلاق اس آدمی کے سمجھے جائیں گے جس کے اخلاق اپنے اہل کے ساتھ سب سے بہتر ہوں گے، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اور پھر اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے آگے فرمایا کہ انا خیرکم لأہلی، اور ان میں تم سب کے لیے جو رول ماڈل، جو اگزامپل ہے وہ کیا ہے، وہ میں ہوں ظاہر ہے آف کورس، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات کے اندر دنیا کی بہترین نمونہ ہے، وہ قرآن کریم نے ہمیں خود بتا دیا، وہ پیش ہے، اور اسی لیے فرمایا کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ یعنی اس حدیث میں بیسیکلی جو میاں بیوی کے آپس میں جو اسپاؤزل ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کے بارے میں بات چل رہی ہے، اور ظاہر ہے جس طرح شریعت میں اور ہمارے دین اسلام کے اندر آفٹن ٹائمز بہت سارا مسکنسیپشنز ویری کر لیتے ہیں، اور ہمارے یہاں آفٹن ٹائمز یا تو ایکسٹریم ڈویژنس کی طرف، یا تو بالکل ہی کوئی مرد آدمی ہے، مرد ہے، میل ہے، وہ اپنے رائٹس کی بات کرنے پہ آتا ہے تو فیمیل کے بالکل ڈس ریگارڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور دوسری طرف پھر فیمنزم اور جو ایک یو نو ویسٹرن انفلوئنس کے تھرو اس ایک فیمنسٹ تھاٹ کی ایک ویو چل رہی ہے، تو وہ بالکل ہی اوپن اور لبرلزم اور ماڈرن ویسٹرن ایک سویلائزیشن سوچ جو ہے اس کے تحت، تو پھر وہ بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو کے مردوں کے ہی سبارڈینیٹ ہونے کو تیار نہیں ہوتی، لیکن جو دین اسلام ہے اس کے اندر ہر چیز ہیز ٹو بی ان اے بیلنس، اینڈ یو نو اعتدال کا جو ایک سبق ہمیں ملتا ہے وہ اس حدیث میں اصل بیان ہو رہا ہے، کہ مردانگی یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنی بیوی کے اوپر بہت زور ظلم کر رہا ہے، یا یو نو آرڈر جما رہا ہے، یا اسے بالکل اپنے حساب سے یو نو ایک ذرا کوئی بات ہو گئی تو سمجھے کہ جی چیخنا دھاڑنا اور شور شرابہ شروع، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بہترین جو کریکٹرسٹک ہوں گے، جو انسان کی اچھائی ہوگی، اس کا معیار ہوگا، اس کا اخلاق ہوگا، وہ بہترین تب ہوگا جب وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہوگا۔ تو فرسٹ آف آل تو ظاہر ہے دونوں طرف سے بیلنس ہونا ظاہر ہے ضروری ہے، جو انسانوں کے جو میوچول ریلیشنز ہوتے ہیں اس کے اندر، جو جسے اس لینگویج میں ازدواجی تعلقات کہا جاتا ہے، اس کی خاص ظاہر ہے ایک نوعیت اور اہمیت ہے، جس سے جو یو نو ایکسٹریم عظیم یو نو بہت زیادہ بڑے بینیفٹس اور منافع اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو اس کو کسی ایکسپلینیشن، کسی وضاحت کی بیسکلی تو محتاج نہیں ہے، اور ظاہر ہے جو میوچل ایک میاں بیوی کا ریلیشن ہوگا، ایک اسپاؤزل جو آپس میں معاملات ہوں گے، اگر وہ اس میں ہی سکون اور یو نو قلب کا جو اطمینان ہے وہ نہیں ہوگا، تو آفٹن ٹائمز ظاہر ہے بہت سی نسلیں در نسلیں اس سے تو تباہ ہونے کا خطرہ رہے گا۔ اسی لیے ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے یو نو ایک हमें एम्फसिस के साथ बताया कि उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस की ज़रूरत है, और उस तमाम जो हमारी तालीमात हैं, हमारी जो एजुकेशन है शरीयत की, उसमें तमाम चीज़ें बिल्कुल मुतायन और एक्सप्लेन की गई हैं। बीवी को ज़ाहिर है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल चाहिए कि वो अपने शोहर को सबसे बाला तरफ और हाईएस्ट लेवल पे समझे, उसकी यू नो ओबीडियंट और वफादार और उसकी खैर ख्वाह, उसकी जो यू नो किसी किस्म की जो उसकी विशेज़ हैं, डिज़ायर्स हैं, वांट्स में उसकी कोई कमी ना छोड़े। लेकिन दूसरी तरफ शौहर को भी चाहिए कि वो बीवी को अल्लाह का एक यू नो गिफ्ट, एक अता और एक नेमत समझे, उसकी यू नो कदर करे, उससे मोहब्बत करे, उसे यानी कोई अपना दुश्मन ना समझे, और अगर कोई ज़ाहिर है ऑफ़ कोर्स उससे कोई गलती भी हो जाती है तो उसे हाइड करे, सब्र तहम्मुल और विजडम के साथ उसे डील किया जाए, बजाय इमोशनल हो के या एक बायास तरीके से या प्रेजडिस तरीके से बिल्कुल अपनी मर्दानगी दिखाने पर उतर आए। तो दोनों तरफ से बैलेंस होना फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए एक पहले तो ये समझने की बात है कि रिवायत में आता है, जैसे अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की एक दूसरी रिवायत है, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज़मुन्नास हक़्क़न अलल मिरअति ज़ौजुहा व आज़मुन्नास हक़्क़न अलल रजुलि उम्मुहु, कि औरतों पर सबसे बड़ा हक जो होगा वो उनके शौहर यानी कि उनके हस्बैंड्स का होता है, और हस्बैंड्स यानी ये मर्दों पर सबसे बड़ा हक उनकी माँ का होता है। तो अब ये ऑफ्टन टाइम्स कन्फ्यूजन हो जाता है कि जब शादी हुई और यू नो सास बहू के झगड़े, और हमारे यहाँ ख़ास तौर से एक इस सब कॉन्टिनेंटल कल्चर के अंदर स्पेशली, क्योंकि म्यूचुअल एक जॉइंट फैमिली सिस्टम के तहत बहुत सारे मिसकंसेप्शंस पैदा होते हैं और कन्फ्यूजन्स पैदा होते हैं, अगर जो रियलिटी है इन इटसेल्फ, तो दोनों के अंदर बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और ज़ाहिर है ना शौहर को चाहिए कि वो बीवी का इतना वफ़ादार होने पे आ जाए कि माँ को भूल जाए, और ना ही माँ की बातों में आके बीवी से लड़ता झगड़ता रहे, तो उसे सम वॉट इन द मिडल कहीं ना कहीं बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले ज़ाहिर है अगर हम स्टेप बाय स्टेप इस मसले को समझने की कोशिश करें तो बीवी के लिए शौहर की अहमियत फरमाया कि सबसे बड़ी होगी, सबसे ज़्यादा जो हक होगा औरत पर वो उसके शौहर का होगा, इवन उसके माँ से, बाप से, भाई बहन, औलाद से, सबसे बड़ा हक बीवी पर जो खातून पर, औरत पर होगा वो उसके शौहर का होगा। और उसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट डाउन टू दैट एक्सटेंड टू से एंड स्टेट इन अ रिवायत इन तिर्मिज़ी शरीफ के लव कुंतु आमरु अहदन अन यसजुद लि अहदिन अमरतुल मरअता अन तसजुद लि ज़ौजिहा, कि अगर मैं किसी भी मखलूक को यू नो किसी भी अल्लाह की क्रिएशन को अगर सजदे का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। यानी इतनी एक्सट्रीम लेवल पे बात की कि ज़ाहिर है दीन इस्लाम की तो पूरी जो बेसिस है, जो आइडियोलॉजी है, वो तौहीद के ऊपर, गैरुल्ला किसी भी फॉर्म में अल्लाह के सिवा किसी के आगे ना झुकने की ये जो आइडियोलॉजी हमें दीन इस्लाम की शक्ल में मिलती है, उसमें किसी भी मखलूक पर किसी दूसरी मखलूक का ज़्यादा से ज़्यादा हक बयान करने के लिए इससे ज़्यादा बलीग़ और मुअस्सर कोई दूसरा उनवान नहीं हो सकता, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान फरमाया कि बीवी पर शौहर का जो हक है वो इतना ज़्यादा है कि अगर किसी को इवन दो के ऐसा नहीं है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन अगर किसी को ये हमें राइट देता कि कोई सजदा करे, बाव डाउन करे किसी दूसरे के आगे, तो औरत को मैं ये कहता कि अपने शौहर को सजदा करे। और ज़ाहिर है औरत पर खुदा के बाद सबसे बड़ा हक यही साबित होता है वो उसके शौहर का होता है, तो उसे यही चाहिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो औरत को कि वो जो उसका हस्बैंड हो उसके तमाम मामलात में उसका ख्याल रखे, उसकी यू नो फेथफुल रहे और ओबीडियंट रहे, और उसकी डूज़ एंड डोंट्स का ख्याल रखे, और विशेज़ और डिज़ायर्स और वांट्स के ख़ास तौर से यू नो टेक केयर करे। और ये रिवायत एक ही नहीं बल्कि बहुत सारी किताबों में, एक दूसरी मुस्नद अहमद में भी इसी मज़मून की एक रिवायत मिलती है, फिर वहाँ पे भी यही फरमाया, ला यसलहु लिबशरिन अन यसजुद लिबशरिन वलौ सलहा लिबशरिन अन यसजुद लिबशरिन लअमरतुल मरअता अन तसजुद लिज़ौजिहा मिन अज़्मिल हक़्क़िही अलैहा, कि मैं किसी भी के लिए ये जायज़ नहीं है किसी एक आदमी के लिए कि वो किसी दूसरे को सजदा करे, बाव डाउन करे। बट अगर ऐसा होता कि मैं ये पॉसिबिलिटी बयान करता कि कोई किसी को सजदे की इजाज़त दे, तो वो बीवी को ये ऑर्डर करता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। तो इससे ज़ाहिर है जो हस्बैंड्स के हुकूक हैं वो इन हदीस से बहुत ही हाईएस्ट लेवल पे बयान होते हैं। और ये रिवायत जगह जगह एक दूसरी भी सुनने, अबू दाऊद के अंदर भी आता है, हज़रत माज बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु की एक रिवायत आती है जिसमें वो सीरिया से यानी शाम से एक दफ़ा किसी ट्रैवल करते हुए आए और उन्होंने वहाँ के कल्चर में देखा लोग अपने जो उनके रैबाइज होते थे, जो उनके प्रीस्ट्स होते थे, पादरी होते थे, पेशवा होते थे, उन्हें और जो उनके कौमों के जो सरदार होते थे, यू नो लीडर्स होते थे, उन्हें वो बाव डाउन किया करते थे एज अ रिस्पेक्ट। तो उन्होंने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इसके बारे में करने दरियाफ़ फरमाया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैटेगोरिकली यही फिर बात दोबारा की कि लामरतुल मरअत अन तज़ुदा लिज़ौजिहा, कि ऐसा ना करो, कोई किसी को अलाव ही नहीं है। उन्होंने ये समझा कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस एज़ अ बाव ऑफ रिस्पेक्ट करूँ, इस आगे झुकूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे। ऑफकोर्स वो तो सबके सरदारों के सरदार और सैयदुल मुरसलीन और अम्बिया के रसूल के तमाम के सरदार थे, लेकिन उनको भी आगे बाव डाउन करने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो मेरे आगे भी बाव डाउन नहीं करो, क्योंकि इसकी शरीयत में, दीन में कोई इजाज़त ही नहीं है। और ये एक सिंबॉलिक सिर्फ फिर आगे ज़ाहिर बात चल रही है कि अगर ऐसा होता कि मैं किसी को इजाज़त देता भी बाव डाउन करने का, तो वो बीवी को ऑर्डर करता कि अपने शौहर को सजदा करे। और ये रिवायत अगेन सुने अबू दाऊद के एक दूसरी सहाबी कैस बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु के वाक़े में भी आता है। वो एक दूसरे मकाम में हीरा का कहीं तस्करा आता है, कोई जगह थी समवेयर अराउंड कूफा, उसके पास कोई एंशंट शहर था, वहाँ से लाए और आए और वहाँ पे भी उन्होंने इसी तरह देखा, बारह लोग बाव डाउन किया करते थे। उन्हें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैटेगोरिकली फरमाया कि नहीं, ऐसा नहीं है। और एक दूसरी रिवायत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से भी है, जिसमें सहाबा ने देखा कि ऊँट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे के लिए सजदे में गिर गया, और उस पर सहाबा के दिल में ख्याल आया कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे बाव डाउन करें, मगर उससे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल कैटेगोरिकली मना फरमाया और बिल्कुल कैटेगोरिक फरमाया उबुदु रब्बकुम वकरिमु अखाकुम वलौ कुंतु आमुरु अहदन यसजुद लिअहदिन लामरतुल मरअत अन तसजुदु लिज़ौजिहा, के इबादत और परस्तिश जो होती है, यू नो वर्शिप, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुबहानहू व तआला की और रब की करो, और अपने भाई का इकराम करो और एहतराम करो। और अगर किसी को किसी दूसरी मखलूक पर बाव डाउन करने की इजाज़त होती तो वन एंड ओनली जो रिलेशन था वो यही था कि शौहर को उसकी बीवी बाव डाउन करती। लेकिन जाहिर है ऑफ कोर्स ये भी सिंबॉलिक ही बात हो रही है, वरना दीन इस्लाम में, शरीयत में इन चीज़ों की कतअन कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई किसी दूसरी क्रिएशन को बाव डाउन करे। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुबहानहू व तआला ही इसका हक रखता है कि उसको सजदा किया जाए, उसके आगे बाव डाउन ही हुआ जाए और उसी के इबादत की जाए और वर्शिप की जाए। लेकिन इन अहादीस से ज़ाहिर साबित यही होता है कि शोहरों का एक ख़ास तौर से मकाम है और एक मर्तबा है जो बीवियों को अपने ख्याल जिसका रखना चाहिए। और जो जैसे कि कुरान पाक में आता है, रिजालु कवामून अला निसा, जो मर्द होते हैं वो औरतों के सरबराह होते हैं, ज़िम्मेदार होते हैं, यू नो कवाम उन्होंने कायम करने वाले होते हैं। तो बीवियों को ऑर्डर किया कि वो अपने शोहरों की, अपने जो हस्बैंड्स हैं उनकी इताअत करें, उनकी ओबीडियंट रहें, फेथफुल रहें, और जो ऐसा करेंगी तो फिर सूरह निसा के अंदर आता है फस्सालिहात कानितातुन हाफिजातुन गैब, कि जो नेक बीवियां जो होती हैं वो शौहरों की फरमाबरदार होती हैं और शौहरों की यू नो एब्सेंस में, गैर मौजूदगी में भी उनकी फेथफुल रहती हैं, ये उनकी निशानी होती है। और जाहिर है जो औरत अपनी शौहर की फरमाबरदार होगी और फेथफुल होगी तो उसके लिए बहुत सारी खुशखबरियाँ और बहुत सारी बाउंटीज़ भी होंगी। जैसे कि एक रिवायत में आता है, इज़ा सल्लत खमसा वसामत शहरा, कि जो औरत पांच वक्त की नमाज़ पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे और अपने आप को प्रिजर्व करके रखे अपने शौहर के लिए ख़ास तौर से सिर्फ, तो फलितदखुल मिन अय्यि बाबिल अबवाबिल जन्नत शाअत, जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहे उसमें एंटर हो जाए। और यही मौजू और यही टॉपिक एक दूसरी रिवायत में भी आता है, अय्युमा इमरातिन मातत वज़ौजु अन्हा राज़िन दखलतिल जन्ना, कि जो औरत इस हाल में جس کی وفات ہوئی یا فوت ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا, تو وہ عورت جس وہ جنت میں داخل ہو گئی, اٹس اے پاسٹ ٹینس, دخلت الجنہ, یعنی ایک عورت ہے اس نے ساری زندگی جس نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی اور اطاعت کی اور فیتھفل رہی, اس کی اوبیڈینٹ رہی, تو پھر وہ جس جنت کے دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی, اور گویا کہ وہ داخل ہو گئی اس حال میں جس کی وفات ہوئی. اور یہی بات حجت الوداع کے موقع پر پھر خاص طور سے مردوں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی فرمائی, اتق اللہ فی النساء, کہ عورتوں کے مارے معاملے میں اللہ سے ڈرو, انہیں خاص طور سے وہاں پہ فرمایا کہ ولکم علین لا یوتین فروشکم, یہ اخذتموہم بامان اللہ, کہ شوہر ان کے ساتھ بالکل بھی جس طرح سے بیویوں کو فیتھفل اور اوبیڈینٹ اور فرما بردار رہنے کے آرڈرز آئے اور اس شوہر کو سجدے تک کر دینے کی لیول تک کی اس کی اوبیڈینس کے آرڈرز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے, تو پھر دوسری طرف شوہروں کو بھی آرڈر دیا کہ اللہ کے عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, یہ تمہاری اللہ کی امان میں تمہیں دی گئی ہیں. یعنی گویا یہ فرمایا کہ ان کا جو معاملہ ہے اس میں اللہ سے ڈرو, اور یاد رکھو کہ تم اور تمہاری جو بیویاں ہیں ان کے درمیان خدا ہے, اور اگر شوہر ان پہ یوں نو کوئی کسی قسم کا اپنے آپ کو کبھی چاہے شرعاً مینیپولیٹ کرے یا غیر شرعی طور پر بھی اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگے, تو یہ ظلم اور زیادتی ہوگی اور وہ اللہ کی امان کو توڑے گا. اسی لیے فرمایا اخذتموہن بامان اللہ, کہ اللہ کی امان کو مت توڑنا. اور ظاہرہ یہ اس حدیث سے جو حجت الوداع کے موقع پر خاص طور سے فرمایا, بالکل اتنے لاکھوں لاکھ ایک لاکھ سے اوپر صحابہ کرام موجود تھے, اور یہ عورتوں کے لیے کتنا بڑا اس میں ایک شرف تھا اور کتنی انہیں ایک رسپیکٹ دی گئی, خاص طور سے جب فرمایا کہ ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو عورتوں کے معاملے میں, اور مردوں کو یہ آرڈر فرمایا. اور یہی ایک دوسری بخاری اور مسلم دونوں میں ایک روایت ہے دوسری جگہ پہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے, جس میں خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرن, کہ میں عورتوں کے معاملے میں تمہیں اچھائی کی وصیت کرتا ہوں, ان سے اچھا برتاؤ کرنے کی, نرمی کی, مدارات, یو نو ہیونگ اے گڈ کریکٹرسٹکس اینڈ ہیونگ بینگ نائس ٹو یور وائفز, اس کی خاص طور سے تمہیں میں وصیت کرتا ہوں. اور پھر آگے ظاہر ہے یہ بھی فرمایا کہ اسے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا, اسے زیادہ بھی اگر کوئی بندہ بہت اسٹرکٹنیس کے نام پر اور سیدھا کرنے کے نام پر اسٹرکٹنیس کرتا ہے, تو یہاں پہ ٹیڑھی ہڈی کی مثال دی, اسے پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا گیا ہے, اور اگر اس سے زیادہ زور زبردستی کرو گے تو ٹوٹ بھی سکتی ہے. تو اس لیے بہت زیادہ زور زبردستی کے بجائے اسے نرمی سے, اور اس کا معاملے پر خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ وصیت فرمائی باقاعدہ, اور ایک ہنٹ بھی دی کہ انا وجہ شعین فی ظلی آلہ, کہ جو کہ ٹیڑھا پن ہوتا ہے یہ آلہ یعنی ہڈی کا بھی جو ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ اس کے ہائر جگہ پر ہوتا ہے یا اونچائی کے مقام پر ہوتا ہے, یعنی جو عورت میں جو یو نو اگر ذرا سی بھی آف کورس نیچرلی ایک کریشن ہے اللہ کی, تو وہ زیادہ جو اس کے اندر کجی ہوگی یا جو ٹیڑھا پن ہوگا اس کا ظہور اوپر کے حصے میں ہوگا, یعنی جو سوچنے والا دماغ ہوتا ہے یا بولنے والی زبان ہوتی ہے جو باڈی کے اپر حصے میں ہوتی ہے, تو وہ اس جگہوں میں ذرا سی شی مے بی لیکنگ لٹل بٹ ایز کمپیئر ٹو دا مین, تو اس لیے خاص طور سے فرمایا کہ اسے اپنے آپ سے کمپیئر نہ کرو, اپنے دماغ سے نہیں سوچو, عورت کا اپنا ایک دماغ ہے, تو اس سے اس لیول پہ جا کے ہی برتاؤ کرو, اچھائی کرو, اور اسی لیے اسی بات کی وصیت فرمائی کہ ان سے خیر کا معاملہ کرو, اچھائی کا معاملہ کرو. اور حدیث کے شروع میں بھی فرمایا استوصوا بالنساء خیرن, کہ میں تمہیں خاص طور سے وصیت کرتا ہوں عورتوں کے ساتھ اچھائی کا, اور بالکل اینڈ میں حدیث کے دوبارہ فرمایا فاستوصوا بالنساء, یعنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور دلداری کا برتاؤ کتنا اہم ہے, اس کا باقاعدہ اہتمام فرمایا, شروع میں فرمایا اور پھر حدیث کو دوبارہ مکمل اینڈ دوبارہ اس پہ کیا. اور ظاہر ہے کوئی بھی کیونکہ پرفیکٹ ہو نہیں سکتا, ایسا پاسبل نہیں ہے ہم کسی سے ایکسپیکٹ کریں کہ سمبڈی از 100% بالکل परफेक्शन पे हो, ऐसी आइडियलिस्टिक सोसाइटी कोई रियलिटी के ख़िलाफ़ है बात। इसीलिए एक दूसरी रिवायत में आता है मुस्लिम शरीफ के अंदर, ला यफ़रुकु मुमिनुन मुमिनतन इन करिया में ना खुलकन रज़िया में ना आखर, कि कोई ईमान वाला आदमी जो है वो अपनी किसी मुमिना बीवी से नफ़रत नहीं कर सकता। ही कैन नॉट हेट हिज़ वाइफ इफ़ ही इज़ अ मुस्लिम, बिकॉज अगर उसे कोई एक आदत किसी की नापसंद भी है तो उससे कोई दूसरी आदत पसंद होगी। तो यू नो, एक को किसी बुराई अगर किसी के अंदर है भी तो उसकी वजह से उसकी दूसरी अच्छाई को डिसरिगार्ड कर देना, इससे ख़ास तौर से मना फरमाया। और जो औरत की अंदर खूबियाँ हों उस पर निगाह डाले और उसकी कदर व कीमत को समझे और उसे अल्लाह का जो अमान अल्लाह है उसके मुताबिक उसके साथ मामला करे, ये इस ख़ास तौर से वसीयत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और यही बात सूरह निसा के अंदर कुरान पाक में भी आती है, वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ फ़इन करहतुमूहुन्ना फ़असान तकरहु शैयन वयजअल्लाहु फ़ी खैरन कसीरा, के बीवियों के साथ यू नो मुनासिब और जो माकूल तरीके से गुजारा करो, अच्छाई बिल मारूफ तरीके से उनसे यू नो एक लेन देन का जो उनसे तरीक़ाकार है, उनसे डीलिंग है वो करो। और अगर फ़ैन करे तुमना, कोई बात तुम्हें अगर उनकी नापसंद भी आ गई है, कोई हो सकता है किसी की बीवी के अंदर कोई बुराई हो, कोई बहुत बदज़बान हो, कोई बहुत ही लड़ाका हो, कोई गुस्से वाली हो, कोई पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर ऐसा है भी तो भी इन करे तुमूशन, अगर ऐसा हो गया किसी की एक बुराई देख नज़र आ गई तो, लेकिन वयजअल्लाहु फ़ी खैरन कसीरा, अल्लाह ने उसके अंदर बहुत सारी दूसरी खूबियों और अच्छाइयाँ भी पैदा की होंगी। तो एक बुराई को ना देखो बल्कि उसके अंदर जो ढेर सारी अच्छाइयाँ उन्हें देखो, ये मर्द को बार बार वसीयत फरमाई। और जो मर्द ऐसा करेगा अपनी बीवियों के साथ अच्छा होगा, अच्छा बर्ताव करेगा उनके साथ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई और कुरान पाक की इन वसीयतों पर और नसीहतों पर अमल करते हुए बर्ताव करने वाला होगा, उसके लिए ख़ास तौर से खुशखबरी फिर फरमाई। एक रिवायत के अंदर तिर्मिज़ी शरीफ में जो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रिवायत की है, जिसमें फरमाए इन्ना मिन अकमलिल मुमिनीन ईमानन अहसनहुम खुलुकन व अल्तफहुम बिअहली, के जो मोमिन का ईमान है वो मुकम्मल उस मोमिन का होगा जिसके अखलाक अच्छे होंगे और उसका मामला अपनी बीवियों अपने अहल के साथ उल्फत व मोहब्बत का होगा, अल्तफहुम बिअहली। और ये फिर मज़मून टॉपिक बहुत सारी रिवायात में, एक दूसरी रिवायत में भी आता है जहाँ पे फरमाया अहसनहुम खुलुकन व खियारकुम खियारकुम लिनिसाइहिम, कि तुम में से बेहतरीन आदमी वो है जो अपनी बीवियों के साथ बेहतरीन है, यानी उसके साथ मामला अपनी बीवियों के साथ अच्छा है। और ज़ाहिर है अब इस मामले में भी बीवियों के साथ अच्छाई करने में भी जो सबसे आला और अकमल और अशरफ जो सबसे एग्जांपल हमें मिलती है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद ज़ात के अंदर जो उनका बर्ताव हमें देखने को मिलता है। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैं अपनी सहेलियों के साथ खेल रही होती थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दाखिल होते थे तो मेरी माई फ्रेंड्स यूज़ टू नो रन अवे और हाइड हेयर एंड देयर, बट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास तौर से उन्हें बुलवाते और मेरे साथ खेलने की इजाज़त देते कि मेरे डर से तुम लोग अपना खेलना बंद ना करो, बच्चियों का अपना हक होता है। और ज़ाहिर है वो छोटी भी थीं तो इसलिए वो उन पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती के तहत उन्हें लाइफ को एक यू नो गुजारने से बिल्कुल मना नहीं फरमाते थे, बल्कि उनके साथ इतना अच्छा बर्ताव था, इतना अच्छा उनका एक कैरेक्टर था अपनी वाइफ अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ ख़ास तौर से, कि एक मरतबा फरमाती हैं मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी सफ़र से आ रही थी तो हमने वी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाया कि तुम लोग आगे निकल जाओ, और फिर आयशा से रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि आओ हम रेस करते हैं। So they ran, they both ran and raced together and Ummi Aisha رضی اللہ عنہ won the race. پھر ایک دوسری مرتبہ فرماتی ہیں کہ ہم دوبارہ کسی سفر سے آ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ایسے ہی کیا اور صحابہ سے کہا تم لوگ آگے نکل جاؤ، اور پیچھے اگین عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کم لیٹس ریس اگین اینڈ دیر دے ریسڈ اگین دوبارہ سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، ریس میں جیت گئے۔ اور پھر مسکراتے ہوئے فرمایا حاضی بتل کا سبقہ، یہ تمہارا پچھلے والی ریس کا بدلہ ہے، یعنی لاسٹ ٹائم یو ون سو دس ٹائم میں نے وہ بدلہ چکا دیا، اب میں ریس میں جیت گیا۔ یعنی ایک معاملہ تھا، ایک کرنے کا تھا، کہ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں شوہر ہوں تو میں بیوی کے ساتھ اگر بات بھی میں نے ہنس کے کر لی تو اس میں میری بڑی کوئی بیزتی کی بات ہے یا کوئی عیب کی بات ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے باقاعدہ ریس لگا رہے ہیں، تو اس سے یہ نظر آتا ہے कि बीवी के साथ खेलना, उसके साथ इंजॉय करना, उसके साथ बात करना, हंसना बोलना, ये इससे कोई किसी की शान नहीं घट जाएगी, बल्कि इससे उसकी और इज़्ज़त में इंशाल्लाह इजाफा होगा। और बहुत सारी रिवायात में दूसरी भी जगह पे आता है, एक ईद के मौके पर गालबन कहीं कोई गेम्स का शो चल रहा था, कोई हफ्शा वगैरह के ब्लैक काले लोग कुछ गेम्स वगैरह की तीरंदाजी की और उसकी मुकाबला वगैरह कर रहे थे, तो बाकायदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चादर से अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को छुपा के और बाकायदा उन गेम्स का पूरा व्यू कराया और उन्हें दिखाया कि दिस इज़ हाउ दारबी जो हफ्शा के लोग थे काले थे वो अपनी जो भी तीरंदाजी या उस वक्त की लड़ाई झगड़े की गेम्स कर रहे थे, तो वो बाकायदा दिखाई और उन्हें बताया कि इस तरह से ये लोग गेम्स करते हैं और उन्हें अपने ही शोल्डर के साइड से पूरा गेम शो वो दिखाया बाकायदा। तो बहरहाल इन अहदीस से दोनों तरफ की ही जो बैलेंस है उसको बिल्कुल बराबर करने का पता चलता है कि जिस तरह से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल शोहर के हकूक़ का बारे में आता है कि अगर किसी को सजदे की भी इजाज़त होती, इवन दो नहीं है शरीयत में, लेकिन अगर किसी मखलूक के आगे सजदा करने की इजाज़त होती तो औरत से कहता कि मर्द को सजदा करे, और दूसरी तरफ मर्द से कहा कि मैं तकल्ला औरतों के मामले में अल्लाह से डरो और मैं तुम्हें ये अल्लाह की अमान है, इन्हें अपनी डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड, इन्हें अल्लाह की अमानत में समझो, इन्हें अपने लिए नेमत और गिफ्ट समझो अल्लाह का, और इन पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, इन पर कोई जुल्म ना करो, बल्कि ये याद रखो कि इनके और तुम्हारे मामलात जो हैं उसके बीच में एक रब बैठा है, ऐनमा कुंतुम इन्नमा हुवा माअकुम, तुम जहाँ कहीं भी हो वो खुदा तुम्हारे साथ है। तो औरतों पर ज़्यादा मर्दानगी दिखाने का मतलब ये नहीं है कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती और जुल्म किया जाए, बल्कि उनके साथ अच्छाई का मामला और बर्ताव किया जाए, और इसीलिए फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लि अहली, तुम में बेहतरीन वो शख्स होगा जो अपनी बीवी के साथ बेहतरीन होगा, और वाना खैरुकुम लि अहली, मैं तुम सब में भी अपनी बीवी के साथ बीवियों के साथ सबसे बेहतरीन हूँ, मेरा जो कैरेक्टर है वो अपनी बीवियों के साथ बहुत अच्छा है। तो ज़ाहिर है दोनों तरफ का एक बैलेंस हमें इस शरीयत में और अहदीस और कुरान पाक की आयात में मिलता है। शोहर को चाहिए वो बीवी के हकूक़ का ख्याल रखे और बीवियों को चाहिए वो अपने जो हस्बैंड्स हैं उनके तमाम मामलात का, उनके हकूक़ का ख्याल रखें, उनकी ओबीडियंट रहें, फरमा बरदार रहें, फेथफुल रहें। जो क्लैप होता है, ताली बजती है, वो दोनों हाथ से ही बजती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई एक तरफ से वन साइडेड रिलेशनशिप हो जिसमें एक तरफ से तो बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा हो और दूसरी तरफ से बिल्कुल कई लचक ही ना हो। तो ऐसी रिलेशनशिप्स जो होती हैं वो अगरचे चल भी जाएं बट वो कामयाब और पायदार नहीं होती, उसमें आगे से फिर इफ़ेक्ट्स पूरे बच्चों पर, फैमिलीज़ पर और जानने वालों पर भी आप पड़ते हैं। तो दोनों को, मियाँ बीवी को ख़ास तौर से चाहिए कि तमाम एक दूसरे के जो हकूक़ हैं उनका ख़ास तौर से ख्याल रखें, अल्लाह से डरें और अपने जो मामलात हैं उनके बीच में अल्लाह को अपनी अमान में जो समझें और अल्लाह की अमान में अपने आप को समझें, और समझते हुए दोनों के मामलात और हुकूक जो होंगे वो दोनों एक दूसरे के पूरी तरह से अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह पाक हम सब को अपने अपने बीवियों और अपने अपने शौहरों के साथ तमाम मामलात में अच्छाई और शरअन जो जायज़ और सही तरीक़ाकार है उस पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिलहमदिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।